नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विजह कातरया जिहाव। उत्रेति तन्मयतातरोभिनेदो तं सर्वभूतरिदं तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नय माम चरणन्तिके। श्री रामनवमी है, आज ही के पुनीत दिन में श्री रामचंद्र जी का आविर्भाव हुआ था। विशेष करके रामचंद्र जी के आविर्भाव का कुछ कारण बतलाया गया है कि नारद जी का विचार, नारद जी कभी तपस्या कर रहे थे भगवान की आराधना, उस समय कामदेव प्रकट होकर के उनको पतित करना चाहा, किंतु ये मुस्कुराकर उनसे बोले आप अन्यत्र जाइए, हमारे हृदय में राम है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शंकर जी ने क्रोधित होकर के कामदेव को भस्म कर दिया था, किंतु ये क्रोधित नहीं हुए, इसलिए कुछ उनके अंदर में अभिमान हो गया। अभिमान तो नहीं हुआ, किंतु जगत को दिखलाने के लिए, शिक्षा के लिए ऐसा किया। ये शुभ समाचार देने के लिए सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास में गए, क्योंकि उनके ये पुत्र हैं। उनसे कहा कामदेव हमारी आराधना में विघ्न डालने के लिए आए थे, किंतु हमने हंस करके उनको विदा कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो तुम्हारा बड़ा काम है। शंकर जी भी बड़े क्रोधित हो गए थे और उसे जला दिया, किंतु आप हंस करके मुस्कुरा करके रह गए, किंतु ये बात किसी से मत कहेंगे, हमसे जो कहा दूसरे से मत कहिए, अपने को संयत कीजिए। भगवत भजन करने के समय में थोड़ी सी कुछ हो जाती है तो हम लोगों को बहुत अभिमान हो जाता है, तो अभिमान नहीं होना चाहिए, अपने को संयत रखना चाहिए, विशेष करके क्रोध इत्यादि न हो। तो ये शंकर जी के पास में गए, उनसे भी कहा, शंकर जी ने भी उनको मना किया कि हमसे जो कहा, मैं तुम्हारा गुरु हूं इसलिए कहा, कोई बात नहीं, किंतु आप विष्णु से मत कहना। किंतु माने नहीं, विष्णु के पास में गए, भगवान बड़े प्रसन्न हुए, उनकी वंदना की। इसके बाद में उन्होंने उनसे भी वैसे ही कहा, मैं आपकी आराधना कर रहा था तो उस समय में कामदेव आए और तरह तरह की चेष्टाएं की जिससे कि हमारा ध्यान भंग हो जाए, किंतु नहीं हुआ। इस पर वो बोले, तुम्हारे जैसा कोई जगत में भक्त नहीं है। बड़ी प्रशंसा की और प्रशंसा करने के बाद में वो पृथ्वी लोक में जब लौटने लगे तो उन्होंने ऐसी माया रची, एक सुंदर नगरी बना दी और उसमें 16 वर्ष की राजकुमारी और उसका स्वयंवर हो रहा था, जब ये आए तो उन्होंने देखा जैसे इस लड़की का स्वयंवर हो रहा है उसके पिताजी के पास में। पिताजी ने कहा जरा मेरी लड़की का हाथ देखिए, इसके भविष्य में कैसी संभावनाएं हैं, सुख से रहेगी या दुख से। उसके हाथों को देख करके ये मुग्ध हो गए। इसे जो विवाह करेगा वो विष्णु होगा और वो कभी नहीं मरेगा, अजर अमर रहेगा, उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकते। और ये चिर सौभाग्यवती रहेगी। बहुत ही इसके गुण इसके हैं इस लड़की के। उसका सौंदर्य देखा, उसका गुण देखा, रूप देखा, मोहित हो गए। उन्हें सोचा कि इस लड़की से मेरी शादी हो जाती तो अच्छा होता। कामदेव जिसको कुछ न कर सके, उनके अंदर में ये मोह होने से भगवान ने देखा जिसे इसका कुछ ऑपरेशन करना जरूरी है। हमारे प्रिय भक्त के अंदर में ऐसी भावना आई है, इसलिए ऐसी उन्होंने माया रचना की। इन्होंने थोड़ा सा दूर इधर उधर जाकर के ध्यान लगाया भगवान का, और लगा करके भगवान प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि तुम वर मांगो, क्या चाहते हो? तुम्हें मैं आपकी आराधना की, आज से मैंने कुछ नहीं चाहा, आज थोड़ी सी चीज चाहता हूँ। सोएगा तो उठा करके खड़ा कर दूंगा, रात भर नींद नहीं आई। जब कोई सोएगा आंख थोड़ा सा ऐसा करे उठा करके खड़ा कर देंगे। Those who will sleep here, there is no here not place of sleeping. So if anyone sleep not sitting like this, I will tell them to go from here or stand up on the bench. आज बतलाओ, हाथ उठाओ जी, आज कौन कौन आरती में आया था? जरा हाथ उठाओ, कौन कौन आरती में आए थे? कौन? सब बाकी लोगों को धिक्कार है, बहुत लाखों लाखों बार धिक्कार है। नहीं, आप लोग तो बात है। तो वही दो ना, ये तो भालो था। अरे जैसा करें वो दो तो क्या समझता है? तुम इसको लगा दो जो बाहर तो देखो तो मेरा घर ऊपर हो जाने से ये सब हुआ है। मैं डरता हूँ जब मैं कहीं उतरूंगा पैर टूट जाएगा, इसलिए मैं नहीं आता। तो हमारे देखा देखी सब लोग करते हैं, ये आरती में नहीं आए। जब भी आरती में नहीं आएंगे, प्रवचन में नहीं आएंगे, कीर्तन में नहीं आएंगे, तो मठ में आने की जरूरत क्या है? मठ में आने की क्या जरूरत? घर में ही रह जाए, पुस्तकें वहाँ पर पढ़ लेंगे और दो चार फेरा माला लगा लेंगे, कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग अपने समय में ऐसा कभी नहीं देखा जो आरती में नहीं कोई आए। घंटा बजते ही एकदम सब लोग आ करके खड़े हो जाते थे। आजकल जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा है वो समझता है कि मैं क्यों आऊँ, दूसरे कुछ हैं जब सीनियर हो गए हैं तो मैं क्या आऊं। जितने नए लड़के आए हैं जिनको कोई ज्ञान नहीं वो आरती में आए। मैं समझता कि वो ना आए कोई बात नहीं है, जो पुराने आदमी हैं जिसको भक्ति कुछ बड़ी है, अनुशीलन करना चाहते हैं, ये भक्ति का अंग है तो उनको तो जरूर होना चाहिए। तो हम लोग साधन में हम लोग क्या पढ़ेंगे आगे? अपनी नींद पर काबू नहीं रख सकते, प्रवचन में भी आएंगे तो सोएंगे, कोई साधन भजन नहीं करेंगे, कोई क्लेश नहीं करेंगे, आराम से खाएंगे तो भजन क्या होगा? रामचंद्र भगवान होकर के देखो कैसा कष्ट किया, 12 वर्ष आराम से सोए वनवास के समय में सीता जी को वनवास देकर के अपने आराम से रहे, साधन भजन भाई करना है तो खूब खूब ठीक से कीजिए, जिससे उसका फल हो। जब आरती में नहीं आएंगे, कीर्तन नहीं सुनेंगे, प्रवचन नहीं करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे तो फिर क्या लाभ है। बाहर के लोग आते हैं खूब सवेरे आकर के अपना सब आरती करती सब देखते, उनको कुछ लगन है, हम लोगों को यहाँ रहते हुए लगन है। आई थिंक दैट मोस्ट ऑफ यू हैव नॉट ज्वाइन आरती कीर्तन, यू डोंट हैव वरी फॉर कीर्तन इन मॉर्निंग और इवनिंग आरती, यू शुड केयर फॉर दिस। And if you are not joining kirtan, aarti and all other things, how you can continue your sadhan bhajan? So, मैं क्या बतला रहा था? तो वैसे जब परीक्षा आएगी तो क्या होगा? जब नारद जी जैसे लोगों की ये अवस्था बतला रहे हैं, वो देख करके मुग्ध हो गए। उन्होंने राजा से कहा कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। उन्होंने देश देशांतर के राजा के लड़के आए हैं, बड़े सुंदर से सुंदर, बड़े बड़े धनी मानी समृद्ध, आप ही उसी में खड़े हो जाइए, यदि मेरी लड़की आपको वरण कर लेगी तो शादी हो जाएगी। तो इसलिए भगवान की आराधना की, भगवान से कहा कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि आप कुछ क्षण के लिए अपना रूप हमें दे दीजिए। मैं कहा तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे कल्याण जैसा होगा वैसा मैं करूंगा, जाओ। तो उन्होंने सोच लिया जैसे कल्याण माने हम तो शादी करना चाहते हैं, इसलिए वो रूप दे दिया और जा करके सज धज करके गले में माला ताला दे करके और सामने आए। तो जिधर जिधर खड़े होते उधर से लड़की नाक सिकुड़ा कर इधर से उधर चली जाती और ये बंठन करके फिर सोचे जैसे इसको उसने देखा नहीं, फिर उधर ही में चले जाते। चारों तरफ उनको नाप में लके लगा करके चारों तरफ में घुमाया, तब अकल नहीं आई और शिव जी के दो गण जो उनके पास में थे वो हंसते, ये क्या अद्भुत रूप है, क्या अद्भुत रूप है, वाह वाह। अब इस बार आप थोड़ी सी चेष्टा करने से आगे जाने से आपकी शादी हो ही गई। हंसते थे किंतु नहीं समझ सके। थोड़ी देर के बाद ही में भगवान नारायण गरुड़ पर बैठ करके वहां पर उपस्थित हुए और उनको देखते ही लड़की ने उनके गले में माला डाल दी स्वयंवर की और वे उसे अपनी गरुड़ के पीठ पर बैठा कर अपने बाएं तरफ बैठा करके उड़ करके चले गए। नारद जी को बड़ा क्रोध हुआ और वे पीछे पीछे चले, बैकुंठ में पहुंचे। जैसे आज तक आपकी उपासना की, इसी बीच में बंदरों ने कहा कि जरा रूप तो देखिए कितना सुंदर रूप है और देख करके भाग गए। उन्होंने पानी में अपना रूप देखा, बंदरों का काला मुख, जला हुआ मुख, बड़ा क्रोध हुआ और उसी समय गए बैकुंठ में और उनको अभिशाप दिया, जाओ तुम भी अपनी स्त्री से वियोग होगा तुम्हारा और उसके लिए रोएगा जैसे हम रो रहे हैं और तुमको ये बंदर ही सहायता करेगा। यही अभिशंपा दे दिया तो ही रामचंद्र जी ने माया हटा दी भगवान ने और हटाने के साथ ही साथ में वो समझ गए और बड़े दुखित हुए, भगवान के चरणों में गिर गए, क्षमा मांगी, कहा जी अब तुम ठीक हो गया, अब से तुमको माया नहीं व्यापी गया, कभी अभिमान मत रखना और इस तरह से मत होना। नर जैसे व्यक्ति को नाक में नकेल लगाकर और उसने घुमा दिया, इसलिए हम लोगों को सावधान रहनी चाहिए, याद रखने चैतन्य महाप्रभु जी क्षमा नहीं करेंगे, वो तो सब जानते हैं, इसलिए इस विषय में सबसे सावधान रहना चाहिए। जितने भी प्रलोभन की बातें हैं, आदमी प्रतिष्ठा जिसको चाहता प्रतिष्ठा भी छोड़ देता है काम में लुप्त होने पर, कुत्तों जैसी दशा हो जाती है स्त्री और पुरुष दोनों के लिए। इसलिए भजन करें, भक्त विनोद ठाकुर कहते अलग अलग भजन करें, एक साथ में भजन करने के लिए परस्पर दिल लगी हंसना इत्यादि ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। भक्त विनोद ठाकुर ने जैव धर्म में भी ऐसा दिखलाया है, इसलिए इस विषय में सावधान होकर के हम लोग साधन भजन करें। तो इस नारद जी की के इसको अभिसंपाद के लिए हुआ है, और भी महिप्रताप और सबकी ऐसी भानु प्रताप इत्यादि की ऐसी बातें हैं जिसके कारण उनको अभिसंपात हुआ था। जय विजय भी इसके कारण है, जय विजय को अभिसंपात दिया था, उसमें एक जन्म जब रामचंद्र हुए तो वो रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए थे, इसके लिए भी। किंतु जितने भी बातें दिखलाई गई हैं ये गौण है। भक्त विनोद ठाकुर जी ने नवदीप धाम महात्म्य में संकेत दिया है, ये बातें मूल नहीं है। रावण को और कुंभकर्ण को उद्धार करने के लिए अथवा भानु प्रताप के वो अभिसंपात से या नारद के अभिसंपात से, ये है कारण, युग धर्म भी हो सकता है, किंतु असल कारण ये है कि उसके पूर्व कृष्ण लीला में या उस लीला में भी रामचंद्र जी वनवास के लिए निकलते हैं, सीता जी और लक्ष्मण उनके पास होते हैं, नवद्वीप धाम में पहुंचते हैं मुद्दुम द्वीप में, और रामचंद्र जी वहां पर पहुंचकर कुछ मुस्कुराते हैं। सीता जी पूछती हैं कि किस लिए मुस्कुरा रहे हैं, तो इसलिए कि मैं इस जन्म के बाद में जब मैं कलयुग में अवतरित होऊंगा तो उस समय मैं संन्यास लेकर अपनी मैया को और तुम्हें रुलाकर, तुम विष्णु प्रिया होगी और तुम्हें रुला करके हम भी संन्यास लेकर के चले जाएंगे। ऐसा क्यों? प्रेम के दो पहलू होते हैं, एक मिलन और एक विरह, एक संयोग और एक विप्रयोग, विप्रलंब। मिलन में कैसे परस्पर भाव होते हैं और कैसे परस्पर सेवा होती है ये देखा जाता है। मिलन में सीता जी का विवाह हुआ, उस समय में जब प्रथम मिलन हुआ तो रामचंद्र तुलसीकृत रामायण में ये सब वर्णन किया गया है, वाल्मीकि रामायण में भी। राम के रूप को देख करके सीता जी मुग्ध हो गई, सीता जी के रूप को देख करके मुग्ध हो गए रामचंद्र जी, और रामचंद्र जी कहते हैं कि आज मुझे प्रायश्चित करना है। क्यों? रघुकुल रीत सदा चली आई, उनका मन कभी भी विचलित नहीं होता। आज एक राजकुमारी का रूप देख करके मैं अपने को क्षुब्ध कर बैठा, मैं मुग्ध हो गया, ये ऐसा क्यों हुआ? हमारा मन तो विचलित नहीं होना चाहिए, किंतु आज हो गया क्यों? तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि मालूम होता है ये इसके साथ ही आपकी शादी होगी, इसलिए आपका मन विचलित नहीं हो सकता, रघुवंशियों का मन। तो मालूम ऐसा ही होता है, शायद ये अवश्य ही शादी होगी। उस समय में धनुष यज्ञ हो रहा था, रामचंद्र जी विश्वामित्र के साथ में, लक्ष्मण जी के साथ में आए, और विश्वामित्र की इच्छा से, आदेश से उन्होंने धनुष को एक क्षण में उठाया, कब उठाया किसी को पता नहीं, और उठाते ही झपके से उसकी प्रत्यंचा खींची और मिनटों सेकेंडों में धनुष तीन खंडों में विभक्त हो गया, प्रचंड शब्द हुआ। इसके बाद में सीता जी वरमाला लेकर के खड़ी थी, सब उनकी सहेलियां उनको दे रही हैं, उनको सहायता कर रही हैं। प्रेम में इतनी अधीर हो गई सीता जी जो उनके हाथ नहीं उठ रहे, बस रामचंद्र जी की तरफ एक बार देखा, इसके बाद उनकी नजर नीचे हो गई। कितना आनंद उनको हुआ इसका वर्णन तुलसीदास जी नहीं कर पा रहे। फिर सब लोग मिलकर के उनका हाथ उठा करके रामचंद्र जी के गले में माला दी और रामचंद्र जी ने भी अपनी दा। इसके बाद में विवाह हो, उसमें कितना आनंद ये मिलन में होगा। लीला स्वयंवर रसम लभते जय श्री, इसी के ये उपमा कितनी सुंदर। ये और भी, जब रामचंद्र जी का वनगमन हुआ उसमें सीता जी उनके साथ में गई, कितने क्लेश सहे किंतु उस मिलन में कितना आनंद था। यदि सीता जी राजभवन में रहती, रामचंद्र जी वन में चले जाते तो उनको सुख होता, उनको कदापि सुख नहीं। वन में कितने तरह के कष्ट आते हैं कि स्वयं, किंतु एक साथ में रहने से अकेली सीता जी को रामचंद्र जी की पूरी सेवा करने को सुजोग मिलता है, जो कि यहाँ पर नहीं होता। इसलिए संपूर्ण रूप से उनकी सेवा करती हैं और रामचंद्र जी भी अयोध्या में रह करके अपने मन की भावनाओं को सीता के प्रति जो प्रकट नहीं कर पाते, वो सारी भावनाएं प्रकट करने का उनको सुजोग मिला निकट से। ये सब प्रेम की संजोग की लीला, और वियोग की क्या, वियोग में प्रेम कैसा होता है ये दिखलाया। उस समय में जो मिलन में जो सेवा का सुजोग था, वो सारा सुजोग उनकी स्फूर्ति में उपस्थित होता है। एक क्षण के लिए भी वियोग नहीं होता है भीतर से। तो ये दो पहलू दिखलाना था, वियोग में क्या स्थिति होती है। इसलिए असल में तो पहली बार तो जो दिखलाया गया है वो माया का कार्य था। रावण को वध करना था, कुंभकर्ण को वध करना था, इसलिए माया की सीता जी को लिया और असल सीता जी को अग्नि को दे दिया। मैं अब लीला करूंगा। सूर्पनखा आई, इसके बाद में माया सीता जी उनके साथ में रही, तो माया सीता तो उनके पास में रह नहीं सकती, कभी संभव पर नहीं है, कभी संभव नहीं है। इसलिए साथ ही साथ में रावण ने उसे चुराया मारीच की सहायता से, और अंतिम तक रावण से युद्ध कर उनको वंश के साथ में ध्वंस करके जब सीता आई, तब तक ये माया सीता जी थी। उन्होंने सारी लीलाएं की, विरह में तड़फे, और सीता जी के लिए राम का कितना वियोग, और इधर में सीता जी अशोक वाटिका में रह करके उनके लिए कैसा विलाप कर रही है। एक दिन भी नहीं खाया, स्नान नहीं किया, कोई श्रृंगार नहीं किया, 12 वर्ष नहीं, 1 वर्ष तक, 1 वर्ष शायद रही, तो इस प्रकार से गवाया। उधर रामचंद्र जी भी, रामचंद्र जी के विलाप का तो वर्णन है, सीता जी का उतना नहीं है, किंतु सीता जी का कितना होगा दोनों में वियोग, ये दिखलाने के लिए। और अंत में जब सीता जी आई तो कुछ बहाने से उन्होंने असल सीता को प्रकट करके रखा और माया सीता को दूर कर दिया। मैं तुम्हें ग्रहण नहीं करता सीता जी को, सीता जी ने उनसे कहा ये तो पहले क्यों नहीं कहा। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो इच्छा करो, मैं तुम्हें रख नहीं सकता। सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि तुम अग्नि जलाओ और हम उसमें प्राण को प्रत्याग कर देंगे। उन्होंने जलाया, बहुत लकड़ी इकट्ठी करके जलाया और उसमें सीता जी ये कह करके, यदि राम के अतिरिक्त हमारा कोई स्पर्श न कर रहा हो तो हमारा शरीर जल करके भस्म हो जाए। किंतु जब ही वो आग में प्रवेश उन्होंने किया, वैसे ही आग से शीतल हो गई और अपने देव सीता जी को लेकर और राम को कहा जे सीता जी परम पवित्र हैं, आप इन्हें ग्रहण करें। वो जो महामाया वाली जो थी, माया वाली सीता, वो पवित्र नहीं है, जगत का सृजन इत्यादि कार्य है, उनका संचालन करना उनका कार्य है, उसमें माया का कार्य है, कुछ अज्ञानता का भी कार्य है, जीवों को मोहित करके और उन्हें दंड देती हैं। किंतु महामाया जो है पूर्ण चिन्मय है, इसलिए पवित्रता का ये मतलब सीता जी योग माया है, महामाया नहीं है, स्वरूप शक्ति है तरह से, इसलिए परम पवित्र है, चिन्मय है। तत्पश्चात फिर उनके साथ में मिले, अयोध्या गए। 11,000 राज्य करने के बाद में सीता जी का पुनः पत्याग किया। उसमें विरह में सीता जी की क्या स्थिति थी और राम की क्या स्थिति थी? सीता जी को सांत्वना देने वाले उनके दो पुत्र थे और महाराज वाल्मीकि जी भी थे, और राम को सांत्वना देने के लिए कोई भी नहीं है। लक्ष्मण जी हैं किंतु मौन रहते हैं, बोल नहीं पाते, क्योंकि उनके पति ऐश्वर्य भाव है, इसलिए उनको नहीं कह पाते। किंतु ये अपने बच्चों को लेकर के गोदी में लेती हैं, रोती भी हैं और उनको देख करके खुश हो जाती हैं, और वाल्मीकि जी का सब समय हरि कथा सुनती हैं, इसलिए इनको सांत्वना है पूर्ण रूप से। और उधर रामचंद्र जी राजभवन में रहकर चटाई के ऊपर में सोना, वैसे ही भोजन करना, फल मूल, और उनके वियोग में तड़पना और जलना, उनको सांत्वना देने के लिए कोई नहीं है। ये सब क्या चीज है? विप्रलम्भ के पहलू हैं, जिसमें प्रेम तपता है, तप करके और भी उज्जवल हो जाता है। संभोग में, मिलन में थोड़े सी संभोग की भी कुछ कामना हो सकती है। इसलिए हमारे आचार्यों ने भजन में विप्रलम्ब भाव से भजन करने का उपदेश दिया। हम लोग समझें जो कृष्ण से करोड़ों करोड़ों अनंत काल से हम लोग बिछड़े हुए हैं, इस चीज को हम उपलब्धि करें और इसके साथ में वैसा भजन करें। जिस समय में किसी स्त्री को उसका पति छोड़ दिया हो और छोड़कर चली जाओ हमारे घर से, तो श्रृंगार करेगी और खाए पिएगी आराम के साथ में कि नहीं? वैसे समझे जो कृष्ण ने हमको प्रत्याग कर दिया है, हमारे अंदर में कुछ कामना वासना आई, हमने कुछ दोष अपराध किया और प्रभु ने अभी हमें दूर कर दिया है, तो इसके लिए हम खूब आराम से खाएंगे पिएंगे हंसेंगे श्रृंगार करेंगे और बड़े आराम के साथ में सब कुछ जीवन निर्वाह करेंगे, तो न दुखी होना चाहिए, इसकी उपलब्धि होनी चाहिए। इसलिए रूप रघुनाथ जी, सनातन गोस्वामी जी इसी प्रकार से करते थे। संख्या पूर्वक नाम गान नतिथि कालावसान निद्राहार विहार काग बीजित, निद्राहार विहार सबको छोड़ दिया, दिन रात कृष्ण के प्रेम में तरंगों में इधर उधर होते थे, रोते थे दिन रात, वृक्षों के एक एक वृक्ष के नीचे एक एक दिन रहते थे। यदि भजन में इस विरह की अनुभूति नहीं हुई तो फिर वो भजन अभी आरंभ नहीं हुआ। इसलिए जयो धर्म में देखो श्री भक्त विनोद ठाकुर जी ने जितने लोगों का वर्णन किया है, ये कैसे भजन करते हैं। महाप्रभु के गणों को देखे, ये कैसे महाप्रभु खुद कैसे दिन रात रोते कलपते, ऐसे भजन आनी चाहिए। तो ये रामचंद्र, हाँ, तो इसीलिए प्रेम का दो पहलू दिखलाया, और रामचंद्र जैसे सीता जी की प्रतिमूर्ति सोने का स्वर्ण उनकी प्रतिमा थी और उसका पूजन करते थे राम खुद, और महाप्रभु जी के लीला में वो क्या किया इसका प्रतिदान देने के लिए, अब विष्णु प्रिया ही उनकी प्रतिमूर्ति का पूजन करेंगी और ये सन्यासी होकर के रामचंद्र जी माल में रहे और सीता जी को बाहर किया, और इस लीला में इन्होंने क्या किया, खुद ही संन्यास लेकर के वनों और जंगलों में भटकते रहे, और लक्ष्मी जी को, विष्णु प्रिया जी को अपने घर में रखा और वहीं पर उन्होंने स्वर्ण तो नहीं, ये नीम के दारू विग्रह करते और उनका पूजन करती, किस प्रकार से भजन वो करती थी आप लोग जानते हैं। यदि भजन हो तो विष्णु प्रिया जी जैसे ही कैसा भजन होना चाहिए। इसलिए ये सब बातें इसलिए मालूम पड़ता है, ये प्रेम के इस विप्रलंब पहलू को आस्वादन करने के लिए राम ने इस जगत में वो पधारे थे और उन्होंने संयोग और वियोग दोनों का ही किया, जैसे कृष्ण ने भी संयोग और वियोग का किया। ब्रज में जब तक रहे तब तक संयोग की लीला और इसके बाद में वियोग की लीला उन्होंने प्रकट की। इसी तरह से राम का प्रधान कारण ये था, जैसे कृष्ण का प्रधान कारण था प्रेम आस्वादन करना और दूसरों को प्रेम देना, चैतन्य महाप्रभु का युगावतार के लिए धर्म की प्रतिष्ठा करना और साथ साथ में इस प्रेम का आस्वादन करना, उसका कुछ थोड़ा सा अंश जगत को देना, ये मूल कारण है। उसी तरह से राम का भी समझिए, उन्होंने